अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। यह है अमृत। हमें समझना होगा कि अनंत कोटि जीवों को जो खाने पहनने घूमने सूंघने चखने को मिल रहा है, उसे कृष्ण का दिया हुआ है, क्षेत्रज्ञ दिया है। चाहे आप दीमक बन करके लकड़ी चबाइए, वो लकड़ी भी भगवान दिए हैं, वो दीमक का देह भी भगवान दिए हैं, और जो रस की अनुभूति हो रही है वो भी भगवान दे रहा है। चाहे लकड़ी चबाइए, चाहे अप्सराओं के साथ रहिए स्वर्ग में, अप्सरा भी भगवान बनाए हैं, इस जगत की लकड़ी भी भगवान बनाए हैं, सुअर भी वही बनाए हैं, रूप रस गंध सब कुछ वही बनाए हैं। इसको कौन डिनाई कर सकता है? अगर कोई प्रश्न का कोई इसका विरोध करना चाहे तो उसको हम लोग अवसर देते हैं कि जरा विरोध करके देखो, तो पूछा जाएगा उससे कि तुम बताओ कौन बनाया है, कौन बनाया। हम सब आए तो खाली हाथ आए हैं ना, हम यहां से कुछ फूल लेकर के आए थे क्या इस दुनिया में कि माला पहनेंगे, गंध लेकर के आए थे, हवा लेकर आए थे, पानी लेकर आए थे, कुछ लेकर के नहीं आए। लेकिन कितना कितना सूंघ रहे हैं, खा रहे हैं, थाली में कितनी कटोरियां सजाई जाती है, उसमें से एक भी रस एक भी पदार्थ एक भी कटोरी लेकर आए थे? कुछ भी लेकर नहीं आए थे और न लेकर जाएंगे। ये क्षेत्रज्ञ सारी व्यवस्था किया है, आओ भोगो, शरीर भी यहीं छोड़ो जाओ, दूसरा शरीर मिलेगा और उस शरीर के अनुसार मैं तुमको भोग दूंगा। जल में जन्म हो गया तो जल के भीतर कुछ भोजन दूंगा, जंगल में जन्म हुआ तो वहां घास या जो भी पशु है दूंगा खाने के, पेड़ पौधा कीट पतंग की जोनी बना दी है उसमें भी फल फूल तिनका आदि खा करके रहना, सब कुछ कृष्ण बनाया। तो परम भागवत जगभरत जी के प्रवचन का सार है, वास्तव में सारा प्रवचन वो क्षेत्रज्ञ पर ला रहे हैं जिन्हें भगवान वासुदेव कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, सारा प्रवचन केंद्रभूत हो रहा है आकर के। तो हमें मन के आवेग से मन के कार्यों से बचना चाहिए और आत्मा को सामने लाना चाहिए, और आत्मा किसके पास हो जाए, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ से समझौता हो जाए। एक है समस्त क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ और एक है अपने देह का क्षेत्रज्ञ केवल, वही पूरा नहीं जानता। क्षेत्रज्ञ भगवान कहते हैं इदम शरीरम कौन ते क्षेत्र नित्य विधीयते एतद् योगेति तम प्रभु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हे कुंती नंदन, इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है और इसको जो जानता है वह क्षेत्रज्ञ है, तो जीव भी क्षेत्रज्ञ है लेकिन थोड़ा सा जानता है बस, वो शरीर में क्या क्या हो रहा है कैसे अन्न पचता है इसको भी वो नहीं जानता है, लेकिन कुछ जानता है। शरीर में कहीं सुई चुभ हो जाए जान जाएगा, इसको ये जानकारी है। भूख लगती है तो जान जाता है कि अब हमको भूख लगी, इसको जानकारी है शरीर की, या पीड़ा होती है या गर्म हवा लग रही है तो इसको पता लग जाता है, ये भी क्षेत्रज्ञ है लेकिन पूरा पूरा क्षेत्रज्ञ नहीं। और कृष्ण पूरा क्षेत्रज्ञ है और सबके क्षेत्रज्ञ है, सभी काल में और सब जगह क्षेत्रज्ञ चापे मान विधि सर्व क्षेत्र सुधारत और क्षेत्र क्षेत्र अग्योर ज्ञानम जत्तज ज्ञानम मतम। भगवान कहते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है मेरे मत से वही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान। भगवान कहते हैं तुम कोई अपना मत दे अपना ओपिनियन दे लेकिन मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं। आत्मा और शरीर को ठीक ठीक जान लेना यही है ज्ञान। आत्मा का अर्थ यहां चिन्मय पदार्थ से है, भगवान का जीव का और शरीर का अंतर समझ लेना, भगवान में और आत्मा में भी अंतर समझना चाहिए, केवल देह और आत्मा में नहीं, ये बहुत आवश्यक है। तो क्षेत्रज्ञ हमको जीवन की सारी आवश्यकताएं दे रहा है, उसी क्षेत्रज्ञ को हमें समझना है। अच्छा वह क्षेत्रज्ञ बाहर से कंट्रोल नहीं करता है क्षेत्र को, भीतर बैठा रहता है। प्रकृति के अंतर्जानी कारणोदक साई प्रकृति के भीतर है, गर्भोदक साई गर्भ ब्रह्मांड के भीतर है, और चिरोदक साई भगवान प्रत्येक जीव के अंत हृदय में, हृदय से भीतर से कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं समझ लेना चाहिए कि वो भगवान तो अधीन है, ये है वो है। राष्ट्रपति यदि किसी कार के भीतर बैठ रहा है तो ऐसा नहीं कहा जाएगा ये राष्ट्रपति जो है कार का दास है, कार के अधीन हो गया। वो कार के अधीन नहीं है, कार उसके अधीन है कि नहीं? कार उसकी सेवा करती है, उसकी इच्छा के अनुसार कार को चलना है। इधर से कार के भीतर है, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि ये कार के अधीन हो गया। तो इसी क्षेत्रज्ञ को हमें समझना है। क्षेत्रज्ञता मनसो विभूति जीवस्य माया रचते सुनिता आविर्हिता पापी तिरोहिता शुद्धो विचष्टे यह विशुद्ध कर्तु। तो यह जो क्षेत्रज्ञ है वह मन के इन विभूतियों को, विभूति मतलब इसके विकारों को, देखना खाना सुनना हर्षित होना या दुखित होना, क्षेत्रज्ञ सब कुछ देखता रहता है, सब कुछ देखता रहता है। ये कभी कभी तिरोहित होते हैं, जैसे शयन अवस्था में सुप्त हो जाते हैं। वही आदमी जो दिन में हाय हाय करता है, खाने के लिए सुनने के लिए दौड़ता है, सोते समय चुपचाप, तो उस समय मन की जो वृत्तियां होती हैं तिरोहित रहती है, तिरोहित। लेकिन तिरोहित अवस्था में भगवान देखते रहते हैं, वो नहीं सोते हैं, सबके पिछले कर्म को देखते हैं, वर्तमान को देखते हैं, आगे क्या होने वाला है सब देखते रहते हैं। तो कभी तिरोहित रहते हैं, समग्र जीवों की मन की वृत्तियों को भगवान देखते हैं। ये आश्चर्य की बात है। हम तो सो जाते हैं तो उस समय हम स्वयं ही अपने मन के बारे में नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। सो गए गाढ़ निद्रा में और पूरा अलमारी तोड़ करके कोई कुछ ले जाए, कुछ नहीं पता नहीं। लेकिन अनंत कोटि जीवों के अनंत अनंत मनोवृत्तियों को भगवान देखते रहते हैं। शयन अवस्था में भी मन रहता है और सपना जो देखता है तो उसको कहेंगे वृत्ति जगी हुई है। तो सपना जो हम देखते हैं उसको भगवान ऑलरेडी देखते रहते हैं, इसका मन कैसे कैसे हो रहा है। हम सोचते होंगे कि हमारे मन केवल हम देख रहे हैं, हम भले देखें न देखें भगवान जरूर देखेंगे, वो देख रहा है और समस्त जीवों के मन की तरंगों को देख रहा है। तो बाहर का देखना कौन बड़ी बात है, मन में क्या विचार उठ रहा है, क्या उठेगा, अनंत काल के बाद एक पर्टिकुलर जीव क्या सोचेगा किस मिनट पर, भगवान को सब याद है, सब कुछ मालूम। इस तरह का क्षेत्रज्ञ, तो क्षेत्रज्ञ जो क्षेत्रज्ञ एता मनसो विभूति मन की इन तरंगों को, इन कार्यों को, खाने पीने नाचने गाने जो भी है, माया रचते सु नित्य, माया के द्वारा रचित वस्तुओं में भूमियों में मन किस तरह विकृत हो रहा है अनंत कोटि जीवों का, क्षेत्रज्ञ इसको देखते रहते हैं। क्वापी आविर्हिता क्वापी तिरोहिता, वही मन की वृत्तियां जगी रहती हैं। और 10 से 6 बजे के बीच में देखिए शहरों में मन की वृत्तियां कितनी जगी रहती हैं, होटल चलते हैं और क्या क्या सिनेमा चलते हैं, तो रात में भी सिनेमा चलते हैं, बहुत कम देर तक, कम देर तक तिरोहित रहती है मन की वृत्तियां उनकी, लेकिन कुछ भी कुछ समय तिरोहित रहती हैं, दूसरे जीव भी सो जाते हैं, इसको तिरोहित कहते हैं। या बचपन आदि में मन की जो वृत्तियां होती हैं वो तिरोहित रहती हैं, तिरोहित का अर्थ खत्म नहीं, तिरह तिरह का अर्थ पर्दा, पर्दा डाला जो हुआ रहता है, ढकी रहती है। वही बच्चा जिसमें कोई क्रोध नहीं है, कोई काम विकार नहीं है, कोई लोभ नहीं है कि बंबई में फ्लाइट बनाऊं, उड़ू हवाई जहाज से, बच्चे में कोई कामना नहीं है, लेकिन होने दीजिए उसे 20 वर्ष का, तब आविर्भिता है, उसकी मन की तरंगे बिल्कुल आविर्भूत हो जाती, प्रकट हो जाती। वो दूसरों को देखता है, हम ऐसा है वैसा है, तो वो भी योजना बनाता है, ये चाहिए वो चाहिए। तो चाहे बचपन हो या जवानी हो, चाहे शयन अवस्था हो या जागृत अवस्था भगवान सबके मन की बातों को देखते रहते। विचष्टे, विचष्टे का अर्थ है विशेष रूप से चष्ट, देखते रहते हैं। अविशुद्ध कर्म, जो अशुद्ध कर्म करने वाला है, माइक पदार्थों को अपना मान करके भोगना चाहता है, तो उसको अविशुद्ध कर्ता कहते हैं। इसके दो अर्थ हैं यहाँ क्षेत्रज्ञ के, एक तो अर्थ है भगवान और दूसरा जो शुद्ध शब्द है वो शुद्ध क्षेत्रज्ञ। इसका मतलब है कि कुछ अशुद्ध क्षेत्रज्ञ है, अनंत कोटि अशुद्ध है और शुद्ध क्षेत्रज्ञ इनको देखता रहता है। शुद्ध क्षेत्रज्ञ का मतलब है जीव, मुक्त जीव। जो मुक्त जीव होता है वो दूसरे के भी मन की तरंगों को समझता है कि मन की तरंग है, मन की इच्छा है, और अपने तो मन के अनुसार नहीं चलता है। मान लीजिए आपका कोई शत्रु है, शत्रु की चाल को, कूटनीति को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक उसे कैसे बचेंगे। इसीलिए मन का वर्णन किया जा रहा है, इसको समझना है क्या क्या चाल चलता है और कहाँ मोर्चा है, कैसे इसको मारेंगे, कैसे इसको बस में करेंगे, इसके लिए वर्णन दिया जा रहा है। तो जो शुद्ध क्षेत्रज्ञ है वो जानता है, अथवा भगवान जानते हैं। भगवान तो जानते ही है। क्षेत्रज्ञ शब्द बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए वह कौन क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञ का जरा वर्णन कीजिए। मान लीजिए जिज्ञासा होगी तो इस पर राहुगण जी क्षेत्रज्ञ का वर्णन कर रहे हैं। क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष पुराण साक्षात् स्वयं ज्योतिरजः परेशः नारायण भगवान वासुदेवः स्वमायात्मन्यवधीयमानः। तो क्षेत्रज्ञ दो प्रकार के हैं, एक त्वम पदार्थ जीव को कहते हैं, तत् पदार्थ ईश्वर को कहते हैं। तो क्षेत्रज्ञ यहाँ जो सुप्रीम क्षेत्रज्ञ है, वास्तव में सभी काल में रहेगा क्षेत्रज्ञ और सबका क्षेत्रज्ञ, तो उसका वर्णन किया जा रहा है। जो क्षेत्र शब्द है वही इस समय खेत शब्द हो गया है अपभ्रंश में। संस्कृत का क्षेत्र शब्द आजकल खेत कहा जाता है। तो खेत के बारे में कौन जानता है, किसान जानता है। कौन खेत लंबा है, चौड़ा है या ऊंचा है, नीचा है, इसमें पानी देना है, कौन फसल किस खेत में लगी हुई है, कि कौन पक गया है, किसको काटना है, किसको अभी बोना है, किसान जानता है। तो खेतज्ञ कहिए, क्षेत्रज्ञ मतलब खेतज्ञ। तो जैसे किसान में और खेत में भेद है कि नहीं, उस तरह से आत्मा में और देह में भेद है। आत्मा खेत नहीं है, यह किसान खेत नहीं है, वो खेत में काम करता है या खेत में उत्पन्न वस्तुओं को खाता है, लेकिन वो खेत से अलग है। इसी तरह से आत्मा जो जीव है, तम पदार्थ जीव, यह शरीर से भिन्न है, यह शरीर से भिन्न है। तम का अर्थ होता है कि जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है उससे भिन्न, और जो जिससे सारा जगत पैदा हुआ है वो है तत् पदार्थ संस्कृत के अनुसार। तो भगवान भी क्षेत्रज्ञ है, तो भगवान देह से भिन्न है ये तो कहने की कोई जरूरत नहीं। भगवान का भेद आत्मा से किया जाता है और आत्मा का भेद देह से किया जाता है। हम ये समझें कि हम देह नहीं है, लेकिन भगवान को समझने के लिए समझना होगा कि अनंत कोटि आत्मा से परमात्मा भिन्न है, सजातीय हैं, चिन्मय दोनों हैं, लेकिन एक परमात्मा है और एक केवल आत्मा। आत्मा का अर्थ होता है व्यापी, व्यापी का अर्थ होता है जो सबके भीतर प्रविष्ट है, व्यापक। कौन है, तो वो है आत्मा। आत्मा में परम जोड़ना होगा यहाँ हम। आत्मा मतलब व्यापी, सबके भीतर प्रविष्ट है। उपनिषद में कहा गया है एक प्रभु सबके हृदय में विराजमान है और सबको प्रेरित कर रहे हैं, चेतयिता प्रेरयिता, प्रेरणा दे रहे हैं, चेतना दे रहे हैं, तो इसलिए उनको आत्मा कहते हैं। सर्वस्व चाहम हृदय संनिविष्टम, यह बिल्कुल क्लियर विषय है। वास्तव में इतना क्लियर विषय संसार में कुछ भी नहीं जितना भगवान क्लियर है, इतना क्लियर विषय कुछ भी नहीं। और पुरुष जो क्षेत्रज्ञ है वो पुरुष है। यहां पुरुष का अर्थ है पूर्ण, पुरुष पुरुष का अर्थ होता है भोक्ता, पुरुष का अर्थ होता है मर्द, और पुरुष का अर्थ होता है पूर्ण। यहां पूर्ण अर्थ में है। तो जगत में व्याप्त है भगवान, सब जगह उपस्थित हैं और सबको स्मृति देते हैं, सबको खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। किसी चाह से करते हैं क्या, जैसे कोई ऑफिस में बैठता है कंट्रोल करता है मैनेजर, लेकिन वो भी वेतन लेता है। तो भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं, सबका पालन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो क्या वो एक करके कुछ चाहते हैं क्या? नहीं, पूर्ण है वो, पूर्ण है अपने आप में, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो सब तरह से पूर्ण है। इस जगत की सृष्टि और स्थिति प्रलय करते हैं तो यह उनकी लीला है, किसी प्रयोजन से नहीं करते। ऐसा करके उनको कुछ मिलेगा तब वो भी लंबे चौड़े हो जाएंगे, कोई अभाव है, ऐसा नहीं। पुरुष अभाव पूर्ण होता है, ज्ञान से पूर्ण, धन से पूर्ण, वस्तुओं से पूर्ण, सब कुछ से पूर्ण। बल्कि ये जो जगत निकला है उनसे निकला है। ओम पूर्ण मदः पूर्ण मिदम् पूर्णात् पूर्ण उदच्यते, पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते, पूर्ण से पूर्ण निकला हुआ है। पुण्यस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। तो श्री कृष्ण पूर्ण है, वेद का पहला वाक्य ये है पूर्ण। तो हम लोग सदा अपूर्ण, अभी यहां से उठेंगे और 10:30 बजे लगभग पूर्ण करना पड़ेगा स्वाहा, तब जाकर के कुछ स्वस्ति का अनुभव होगा। तो पूर्ण, हम पूर्ण हो नहीं सकते, भगवान सब तरह से पूर्ण है, उनको इनसे वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं। जो दूसरा गुण दे रहे हैं पुराण, पुराण का अर्थ होता है पुराना, पुराना मतलब जगत से वो पुराना है, पुराना मतलब पहले के, इसका अर्थ है जगत कारण। यहां पुराण का अर्थ है जगत के कारण, इसका अर्थ पुरुषा पुराणा का अर्थ बूढ़ा पुरुष नहीं होता है। पुराण पुरुष का अर्थ होता है सबका कारण, वो है बिल्कुल किशोर अवस्था के, आद्यम वैसे हो, आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनम च, नवजौवन है लेकिन है सबसे पहले के, उनसे सारा जगत निकलता है, वो आज के नहीं है। आज के होने का मतलब कि हमको कोई जन्म दिया है, और कितने दिन के हैं बर्थ डेट देख लीजिए, कितने दिन के हम पुरुष हैं, ये शरीर कितने दिन से है। जीव भी पुराण है लेकिन वो कुछ पैदा नहीं किया, इसलिए वास्तव में वो पुराण नहीं है। पुराण पुरुष भगवान है, ऐसे आत्मा के लिए भी भगवान गीता में कहते हैं पुराण है। न जायते मृते व कदाच नायम भूत्वा भवतो व अजो मृत्यु शाश्वतोयम् पुराण, ये भी पुराण है। और पुराण का एक अर्थ होता है पूरा करने वाला, ये जो भागवत पुराण है, इस पुराण का मतलब होता है हमारे जीवन में जो अभाव है ज्ञान भक्ति का, इसको पूरा करेगा, इसको सप्लीमेंटरी कहते हैं। वेदों पर जो बाद में वेदव्यास जी ने कुछ लिखा तो बस इसको सप्लीमेंटरी कहते, पूरा करना है। ये पूरा करता है, इसलिए पुराण है। और पुराण का मैं इलायची खाया था तो मैं तो मैं टकरा, पुराण का अर्थ सबके पहले का, सब बाद में, सबको उसने पैदा किया, सारे जगत को भगवान ने उत्पन्न किया, इसलिए उनको पुराण कहते हैं। साक्षात, साक्षात्कार था अपरोक्ष, भगवान बिल्कुल प्रकट है, भगवान प्रकट इस संसार में सबसे क्लियर वस्तु, जैसे मैं पहले कहा केवल भगवान, और चीज का कोई पता नहीं है कि वो उस रूप में है या नहीं है, क्या है पता नहीं है, लेकिन भगवान बिल्कुल क्लियर। परंतु आज के युग में सबसे संदिग्ध है और सबसे डाउट के विषय भगवान हो गए है ना, कुछ पता नहीं चल रहा है कि भगवान का क्या मतलब होता है।
कोई कहता है भगवान निराकार है, कोई कहता है कि ये है वो है, कोई कहता है हमारा गुरु ही भगवान है, कोई कहता है उधर साउथ इंडिया में कोई भगवान पैदा हो गया, कोई इधर पैदा हो गया, कोई उधर पैदा हो गया, कोई कहता है भगवान है ही नहीं। बहुत कंफ्यूजन का विषय हो रहा है। और जब भरत जी कहते भगवान साक्षात, साक्षात का अर्थ होता है स्वाक्षात, आंखों के सामने है, परोक्ष में नहीं है। सिर्फ श्रीधर स्वामी इसकी टीका करते हैं, कहते अपरोक्ष, परोक्ष कहते हैं आंख से परे जो है, और अपरोक्ष का अर्थ है जो आंख के सामने, सामने है वास्तव में भगवान, ये बिल्कुल साक्षात है, सबसे क्लियर विषय भगवान है चित्रज्ञ। अरे उन्होंने अगर विचार करे आदमी तो कम से कम भगवान को तो देख लेगा उनकी वस्तुओं द्वारा, कि उन्होंने पैदा किया है, हम कुछ नहीं किया है, वही जिला रहे, खिला रहे हैं, चेतना दे रहे हैं, सब कुछ। और मंदिरों में तो साक्षात, साक्षात और स्वयं ज्योति ही, ज्योति का अर्थ ज्ञान और लाइट होता है। भगवान में जो ज्ञान आया है कहीं से आया नहीं, वो अपने आप ज्ञान घन है, चिन्मय। हम लोग कुछ पढ़ करके ज्ञानी बनते हैं, कुछ पढ़े लिखे रटे रटाए सुने तब जा करके कुछ जानकारी हुई। भगवान इस तरह के नहीं, स्वयं ज्योति, स्वयं ज्ञानवान, ज्ञान का अजह जन्मादि शून्य। भगवान कभी प्राकृत शरीर में जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्याहितकारी, वो प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। अज कहते हैं परेश, परेशम ब्रह्मादिना मत ईश नियंता। पर कहते हैं ब्रह्मा आदि को, जो इस विश्व में सबसे श्रेष्ठ है ब्रह्मा जी भगवान शिव, उनके भी कंट्रोलर नारायण, उनके भी ईश परेश कहते। और नारायण वासुदेव का एक नाम नारायण है, क्यों नारायण कहते हैं उनको, जीवों के समूह को, झुंड को नार कहा जाता है, और इन जीवों के भीतर जो रहते हैं ये जीवों का समूह जिनका अयन है उनको नारायण कहते हैं। समस्त जीवों के हृदय में भगवान रहते हैं इसलिए उनको नारायण कहते हैं। अथवा ब्रजवासियों के नरों के समूह में भी रहते हैं इसलिए भी उनको नारायण कहते हैं, गोपों के साथ में रहते हैं इसलिए भी उनको नारायण कहते हैं। यह नार मतलब नीर से नार शब्द बना है, जल के भीतर जो शयन करते हैं इसलिए उनको नारायण कहते हैं। लेकिन यहां नारायण शब्द का अर्थ इस प्रसंग के अनुसार, चित्र के अनुसार किया जा रहा है कि समस्त जीवों में वे नियंता के रूप में, प्रेरणा करने वाले के रूप में है, इसलिए नारायण है। और भगवान है समस्त जीवों के भीतर रह करके भी वे समस्त छह ऐश्वर्यों से पूर्ण। ऐसा नहीं कि ऐश्वर्य से च्युत हो गए इस दुनिया में आकर के, वो भी भिखारी हो गए और ये हो गए, वो दरिद्र नारायण हो, ऐसा नहीं, समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण। जिन्हें अभी प्रश्न होता है कि अरे गुरुजी नाम बताइए, उनका नाम क्या है, तब कहते वासुदेव कृष्ण, वासुदेव क्षेत्रज्ञ हैं भगवान कृष्ण, स्पष्ट आ गया होता है। सब कुछ पूछते 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 नाम पूछा जाता है, सब ठीक है, गुण बताए, क्वालिफिकेशन बताए, नाम बताए उनका क्या, नाम है वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नंद नंद नाय या वसुदेव नंद नाय, वसुदेवाय पार्थ, वसुदेव नंदन भगवान कृष्ण को प्रणाम। तो ये जो श्री कृष्ण है यही है क्षेत्रज्ञ। स्व माया आत्मनि अवधीयमान, फिर करण बार बार इस बात को कह रहे, अपनी शक्ति से अपनी इच्छा से आत्मनि जीव के भीतर अवधीयमान बैठे, अपनी इच्छा से सबके हृदय में अपने को प्रकट करके बैठे, अनंत कोटि जीवों के हृदय में अनंत कोटि रूप से सबके भीतर बैठे, बैठे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके द्वारा कंट्रोल्ड होने के लिए नहीं, कंट्रोल करने के लिए बैठे, सबके हृदय में सर्वस्व चाहम हृदय संलिष्ट। इसीलिए समस्त जीवों का आदर करना चाहिए। हम जितना आदर ड्यूटी का करते हैं उससे ज्यादा आदर जीवों का करना चाहिए, ये भागवत कहता है। क्योंकि यहाँ तो प्राण प्रतिष्ठा से भगवान आते हैं, लेकिन जीवों के हृदय में बिना बुलाए बिना किसी उत्सव के ही वो हैं, स्वयं है। इसलिए सम्मान करना चाहिए सबका। जीवे सम्मान देवे जाने कृष्ण अधिष्ठान। कृष्ण वास कर रहे हैं, कृष्ण का यह सच्चा टेम्पल है वास्तव जीव का हृदय। इसीलिए समस्त जीवों का आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। भगवान ने तो यहाँ तक कहा है कि लज्जा छोड़ करके कुत्ते और गधे तक को प्रणाम करना चाहिए, साष्टांग भूमि पर। ये शब्द घूमो देने से भगवान का मंदिर आ रहा है घूमता हुआ, तो उसमें भगवान अपने आप बैठे। कई बार गीता में कहा था सर्वस्व चाहो हृदय सन्निष्ठ ईश्वर और सर्वभूतानां हृदय से संतुष्टति। हामियन सर्वभूतानि जंतर और हरिमाय, सभी जीवों को घुमा रहे हैं फिरा रहे हैं, सबके हृदय में ईश्वर बैठे। तो स्व माया अपनी चित शक्ति द्वारा बैठे हैं, माया शक्ति द्वारा कंट्रोल होकर के नहीं, अपनी चित शक्ति में स्वरूप शक्ति में सभी जीवों के भीतर बैठे हुए हैं परम पुरुष। किस तरह सारे जगत में व्यापक है और सबको कंट्रोल कर रहे हैं, एक उदाहरण से समझा रहे हैं। जथा नीलस्थावर जंगमाना आत्मा स्वरूपेण निविष्ट ईशे एवं परो भगवान वासुदेव क्षेत्र प्रविष्ट। दृष्टांत उदाहरण दे रहे हैं, जैसे अनिल वायु इस जगत में बाहर भी सब जगह व्याप्त है और प्राणियों के भीतर भी व्याप्त है। हम सांस ले रहे हैं, वास्तव में हमारा शरीर जो है वायु द्वारा नियंत्रित है, इसको वायु कंट्रोल कर रहा है। और हम देखें ट्रेन वाक को वायु कंट्रोल करता है, वो भकुम खोल देते हैं तो बंद हो जाता है, हवा उसको कंट्रोल कर रही है। हमारे शरीर को भी हवा कंट्रोल कर रहा है, यदि हवा न रहे यदि प्राण बंद हो जाए तो ठप हो जाएगी। तो चारों तरफ हवा व्याप्त है, बाहर भी और भीतर भी। तो इसी तरह भगवान नारायण वासुदेव समस्त प्राणियों के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं, इस तरह जगत को चला रहे हैं। हमारा जीवन हवा से, इसीलिए इसको प्राण कहते हैं। बाहर हवा में टहल रहे हैं, अगर बाहर हवा न रहे तब भी मर जाएंगे। केवल भीतर सांस भर गई है उसी से तो जिएंगे नहीं, बाहर भी हवा चाहिए और उस हवा का प्रवेश अंदर भी होना चाहिए। यहां तक कि जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड प्रेशर आदि सब हवा के कारण होता है। हवा के फोर्स से खून इधर उधर दौड़ता है, यहां से झकझक झकझक जाता रहता है इधर। तो हवा पर हमारा शरीर टिका है। उदाहरण कहते हैं जथा अनिल, जैसे अनिल वायु स्थावर जंगमाना, चाहे वो एक जगह रहने वाला पेड़ हो या जंगम हो, चलने वाली वस्तु। आत्मस्वरूप निविष्ट ही से, आत्मस्वरूप में तो मतलब उसमें व्यापक होकर के बाहर और भीतर निवि और ई से कंट्रोल करता है। वायु जैसे समस्त प्राणियों को जीवित रखता है, कंट्रोल करता है। एवं इसी तरह पर भगवान वासुदेव क्षेत्रज्ञ, पर मतलब अप्राकृत दिव्य, प्रकृति के नियमों से परे भगवान वासुदेव क्षेत्रज्ञ आत्मा, ये सब उदाहरण दे रहे हैं। अंतर्जामी बन करके इदम अनुप्रविष्ट, इस जगत के कण कण में प्रत्येक जीव में प्रविष्ट है और बाहर भी। बाहर तो है ही, हम सब उनके भीतर ही हैं, परंतु वे भी हमारे भीतर। और यही आनंद की बात है कि हमारे भीतर चतुर्भुज रूप से हमारे हृदय को कंट्रोल कर। बड़े सुंदर उदाहरण थे। तो अब इस प्रवचन का उपसंहार करते हुए जो भरत जी कहते हैं, इसमें भगवान शब्द इसलिए दिया जा रहा है वासुदेव के लिए कि कोई ये न समझे कि भगवान यदि सुअर के देह में है या कुरूप देह में है, रोगी देह में है, तो वो भी दुखी होंगे, इन देहों का प्रभाव पड़ता होगा। नहीं नहीं, किसी भी अवस्था में भगवान, चाहे वो किसी रोगी देह में रहे या देवता के देह में रहे, भगवान पर इसका कोई असर नहीं होता। भगवान भगवान है, इसलिए बार बार भगवान वासुदेव भगवान वासुदेव शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। सावधान रहना चाहिए भागवत पढ़ने में। अब ये कह रहे हैं कि जब तक मन के इस कुराफात को, मन के इन दूषित वृत्तियों को जीव नहीं जान लेता है, आत्मा नहीं जान लेता है, तब तक वो इस जन्म मरण में पड़ा रहता है। और जब तक वो भगवान नारायण को, कृष्ण को नहीं जान लेता है, तब तक इस माया जगत में भटकता रहता है। इसको न जावते ताम तनु भृंगरेन्द्र विधूय मायां वयुनोदयेन विमुक्त संगोचित षट् सपत्न वेदात्म तत्त्वं भ्रमति तावत्। इस श्लोक में महाराज रघुगण को नरेंद्र संबोधित कर रहे हैं। हे नरेंद्र, हे मनुष्यों में इंद्र, इंद्र का अर्थ होता है श्रेष्ठ मालिक। हे नरेंद्र, मैं जानता हूं कि आप मनुष्यों को जीत करके राजा बने हैं, लेकिन तब वास्तव में आप नरेंद्र होंगे जब मन को जीत लेंगे और इंद्रियों को जीत लेंगे। बहुत बहुत युद्ध किए और नरेंद्रता को प्राप्त हुए हैं।